ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक का तृतीय श्लोक के ऊपर मैं प्रयास करूँगा, हरि गुरु वैष्णवों की कृपा से प्रयास करूँगा कुछ कहना। वो श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, क्या है? चुनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। बल न सहज, सब बोल सकते, चुनादपि सुनिचेना, और मैं सबको बोल सकता हूँ, तुम लोग निज भावना से भक्ति करना चाहिए, तुम लोग दीन हो, दम्भ से ऐसा बोल सकते हो, बोलना सहज। परंतु इस दैन्य भाव हृदय में ग्रहण करना, हृदयंगम करना कठिन है। वास्तव में ये दैन्य भाव, नम्रता, शुद्ध जीव का एक मुख्य लक्षण है। परंतु चूंकि हम इस भौतिक संसार में है अनादिकाल से, अनेक अनेक जन्मों से हम इस भौतिक संसार में है, पतित वस्त्र में है, हमारी बुद्धि शुद्ध नहीं है, हमारी बुद्धि, भावना, दृष्टिकोण शुद्ध भावना से संपूर्ण विपरीत होती है। इस भौतिक संसार में बद्ध जीवों की मनस भावना इस प्रकार होती है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में उसका वर्णन करते हैं, ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं और ज्यादा लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं जगत का केंद्र हूं, हम सब खुद के लिए ज्यादा सोचना कहते। अगर मेरे कान में या नासिका में थोड़ा सा दर्द है, हम बहुत चिंतित होते हैं, और अगर हम टीवी पर देखते हैं न्यूज में कि विश्व में आतंकवादियों का आक्रमण से 200 आदमी मर गए हैं, हम उसको इतना सा ख्याल नहीं देते कि मेरे कान में थोड़ा सा दर्द है, क्योंकि हम सोच मैं जगत का केंद्र हूँ, मेरा हित जगत का मुख्य विषय है। तो इस प्रकार हम कि हम श्री कृष्ण के तुच्छ सेवक इस सत्य कथा नहीं मान के हम सोचते मैं सबसे महत्वपूर्ण हूँ। परंतु शुद्ध भावना में हम अति दीन भाव से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो यही शिक्षाष्टक आठ श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति के बारे में पूर्ण उपदेश देते हैं। और ये शिक्षाष्टक के प्रथम तीन श्लोक में हरि नाम और संकीर्तन के बारे में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की चर्चा, क्योंकि भक्ति विशेषकर इस कलयुग में भक्ति कृष्ण भक्ति होती है विशेषकर हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। तो इस त्रिनादपि सुनिचेन श्लोक में हम चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा मिलती है तो कैसे हरि नाम करना है जिससे हम हरि नाम का वास्तव फल प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण का नाम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, तो भगवान कृष्ण कल्प वृक्ष जैसे है, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है और जगत के स्वामी है, और भगवान कृष्ण हमको सब कुछ दे सकते, जो भी चीज हम मांगते हैं, हम जिसलिए हम प्रार्थना करते हैं तो वो वास्तु भगवान कृष्ण हमको दे सकते। तो चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा देते हैं कि हमारी प्रार्थना शुद्ध भक्ति के लिए होना चाहिए, विशेषकर चतुर्थ श्लोक में, एक्चुअली सब श्लोक में यही प्रार्थना है शुद्ध भक्ति के लिए। तो शुद्ध भक्ति जो हर एक प्राणी का मूल स्वभाव है, जो लुप्त हो गया है, आवरित हो गया है, उस वो शुद्ध भक्ति फिर प्राप्त करने के लिए भक्ति करना चाहिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करना चाहिए। भक्त्या संजतया भक्त्या, मतलब साधना भक्ति करने से शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, प्रेम भक्ति। और इस कलयुग में मुख्य उपाय है साधना में हरि नाम संकीर्तन, साध्य साधन वस्तु जय किचु सकल हरि नाम संकीर्तन मिले बे सकल। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि साध्य अर्थात साधना का फल और साधना, ये दोनों की पूरा विषय संपूर्ण होते हैं हरि नाम संकीर्तन के द्वारा। अर्थात साधना की मुख्य रीति है हरि नाम, और साध्य अवस्था में प्रेम प्राप्त करने के पश्चात भी भक्तों क्या करते हैं, हरि नाम करते हैं। तो कैसे हरि नाम करना जिससे वो प्रेम फल कृष्ण भक्ति प्रेम फल प्राप्त होते हैं। चैतन्य चरितामृत में इस चेतावनी है कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब न पाए कृष्ण पदे प्रेम दो। यदि हम अपराध करते हैं तो बहुत जन्मों में हरि नाम करके भी हम हरि नाम का फल अर्थात कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे। तो कैसे हम हरि नाम कर सकते जिससे हम तुरंत वो प्रेमफल मिल सकते हैं। इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु उपदेश देते हैं, उसका वो उपदेश का वर्णन है श्री चैतन्य चरितामृत में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हर्ष प्रभु कहे सुनो स्वरूप राम राय की बाबे नाम लोयले प्रेम उपजय। तो चैतन्य महाप्रभु उनके दो मुख्य पार्षद स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के को कहते हैं, सुनो किस प्रकार से हरि नाम करना है जिससे कृष्ण प्रेम प्राप्त होते। तो किस प्रकार से तृणादपि सुनिच न तरोरपि सहिष्णु अमानि न मान देन कीर्तनीय साहत्य सदा। ये चाबी है प्रेम कक्ष में प्रवेश करने के लिए, ये चाबी है तृणादपि सुनिच। जे रूप है लोयले नाम प्रेम उपजय तहा लक्षण सुनो स्वरूप रामाय। तो इसका वर्णन है चैतन्य चरित वो श्लोक का अनुवाद पहले चुनादपि सुनेचन। तो भक्तों की भावना ऐसे होना चाहिए कि ऐसे सोचना कि मैं घास से नीच हूं और चरौरिव सहिष्णु। सहिष्णुता अर्थात सब कुछ सहना। तो पैर से सहिष्णुता गुण अधिक होना चाहिए। अमानी ना मान देना, भक्तों का स्वभाव ऐसे होना चाहिए कि हम सर्वदा प्रस्तुत होना चाहिए दूसरों को सम्मान देना, परंतु खुद की प्रशंसा सुनने की इच्छा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार यदि हम कृष्ण कीर्तन करेंगे भगवान श्री कृष्ण पूर्ण संतुष्ट होंगे। क्योंकि कीर्तन क्या है, हरे कृष्ण मंत्र का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि हम जो पतित जीव है हम हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने से प्रार्थना करते हैं कि हे राधे हे कृष्ण मुझको आपकी दिव्या प्रेममयी सेवा नियुक्त कीजिए। तो भक्ति में वो सेवा जो है वो सेवा हम अच्छी तरह कर सकते यदि हमारे ऐसे दीन भाव होते। भक्ति और दंभ अहंकार दोनों एक साथ नहीं हो सकते। मैं सेवा करता हूं, मैं सबसे बड़ा भक्त हूं, तो ऐसी भक्ति तो भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब दीन भाव। तो भौतिक संसार में सब लोग खुद को बड़ा दिखाना चाहते, मैं सबसे बड़ा हूं, तुम कौन हो। भक्ति भाव उसके विपरीत है। इसलिए हमारे लिए तृणादपि सुनिश्चयेन इस भावना ग्रहण करना हमारे लिए कठिन है, क्योंकि हम अनादि काल से विपरीत भाव से अभ्यस्त है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हरि नाम करने के साथ हमें वैष्णव सेवा करना चाहिए, गुरु सेवा करना चाहिए और सदैव श्रवण करना चाहिए कि हम दास 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 दास, हम कभी भी प्रभु नहीं हो सकते। इसलिए इस मायावाद भक्ति के प्रधान शत्रु है। मायावाद में ऐसे कहना हम दास ऐसे ही नहीं कहना, वो सोचना है कि ध्यान से कल्पना से मैं भगवान बन गए हूं। तो जो भगवान के समान हो सकते तो कैसे भगवान की सेवा कर सकते? मायावाद और भक्ति दोनों में उद्देश्य अलग होते। मायावादियों का लक्ष्य है अपना को भगवान बनाना, जो संभव नहीं है, तो उसमें विनम्रता नहीं होते। तो भक्ति में ही विनम्रता होना चाहिए। तो भौतिक संसार में अगर हम ऐसे ही प्रचार करेंगे तो ज्यादा लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि लोग सोचते कि नम्र होना तो उससे मेरा इज्जत नहीं होगा, मुझे बड़ा होना चाहिए। लेकिन वास्तव में समझना चाहिए कि हम बड़ा नहीं है। कौन बड़ा है? देश का प्रधानमंत्री बड़ा है, अभी तो बड़ा पद मिल गया है। लेकिन समझना चाहिए कि आज कि नेता कल का छुआ हो सकते, ऐसा होते हैं संसार चक्र में, ऐसे होते हैं। तो बहुत कम समय में 4 साल 8 साल एक व्यक्ति देश का नेता हो सकते है, उसके बाद संसार सागर में 84 लाख प्रकार की जीव जाति में दूसरा पद मिलते। तो कौन बड़ा है? कौन बड़ा है इस भौतिक संसार में? कल्पना से हम सोचते या प्रयास करते खुद को बड़ा बनाना, परंतु बड़ा है भगवान। हम कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकते। हम सदैव छोटे से छोटे से छोटे से छोटे, और जीव का गौरव है यदि वे स्वीकार करते हैं कि मैं छोटा हूं। तो ये नम्रता जीव का स्वभाव है। इस भौतिक संसार में, समाज में वो लोग जो शिष्ट, वो शिष्ट बोलते हैं, जो शिष्टाचार करते हैं, उनका व्यवहार भद्र होते है। परंतु सामाजिक भद्रता और भक्ति नम्रता एक ही नहीं है। ये भौतिक भद्रता भौतिक है और भक्ति में वो नम्रता है वो संपूर्ण आध्यात्मिक है। अगर लोग का स्वभाव भद्र होते वो अच्छा है, लेकिन भद्र होने से भक्ति नहीं होते। बहुत लोग तो ऐसे भद्र व्यवहार करते हैं परंतु सब प्रकार का पाप भी करते। तो कृष्ण भक्ति में वो नम्रता जो है उसका आधार है सेवा भाव। रामायण में भगवान रामचंद्र के दो सबसे प्रसिद्ध सेवक है, हनुमान और लक्ष्मण। तो हनुमान प्रसिद्ध है लंका परी का ज्वलाने के लिए, गुस्सा होने से, और भक्ति भक्ति में नम्रता होना चाहिए। तो हनुमान क्या नम्र नहीं था, नम्र थे। तो यही भक्ति नम्रता है। रावण जैसे सब राक्षस का दंड देना, वो भक्ति नम्रता है। लक्ष्मण भी उनका स्व गरम स्वभाव है, तो कैसे नम्र है लक्ष्मण। तो उनकी नम्रता है कि उनका गरम स्वभाव है भगवान श्री राम की सेवा में। और महाभारत में अर्जुन तो नम्र होने चाहते थे, भौतिक भद्रता दिखाना चाहते थे। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते थे, तुम क्या मूर्ख हो, लड़ाई करो, मेरी सेवा करो, मेरा आदेश पालन करो। तो अर्जुन नम्रता से भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा ग्रहण किया और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार लड़ाई किया है। तो यही भक्ति नम्रता है। तो नम्रता है सहिष्णुता। सहिष्णुता का दृष्टांत है वृक्ष। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्तों का स्वभाव ऐसा है, उत्तम होया आपन आके माने त्रिनाधम। तो भक्त जो उत्तम है मानते हैं कि मैं घास से नीच हूं, और खाली बोलने से ऐसे नहीं होते, मैं सबसे एक भक्त कह सकते मैं सबसे नीच हूं, नहीं मैं सबसे नीच हूं, नहीं मैं सबसे नीच हूं। तो ऐसे खाली बोलने से चुनादपि सुनिश्चित नहीं होते, भक्तों का व्यवहार में समझ जाते हैं कौन वास्तव भक्त है। भक्ति तो अभिनय का विषय नहीं है, हृदय का विषय है। तो उत्तम होया आपना के माने त्रिनाधम। दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष। तो दो प्रकार से वृक्ष सहिष्णुता गुण का आदर्श है। वृक्ष जैना काटेले हो किच्छु ना बोलाए, सुखाया मोले हो कारे पानी ना मांगा। तो अगर कोई आते हैं और वृक्ष से कुछ लकड़ी काटते हैं, वो वृक्ष तो कुछ भी खिलाफ नहीं करते, ठीक है कट लो ले लो जितने भी चाहते हो। और पानी का अभाव से सूख जाके भी वो वृक्ष पानी नहीं मांगते, सहन न करते। तो इस प्रकार भक्तों का सब कुछ सहन न करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वो भक्त को कुछ बोलते कुछ करते हैं, आक्रमण करते गाली देते हैं, वो भक्त सहन न करते और अपना कष्ट, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, सब कुछ सहन न करते, वृक्ष जैसे। जय जय मा गए तारे दया आपन धन, और लोग जो कुछ भी वृक्ष से चाहते तो वृक्ष देते हैं, फूलों फलों सब कुछ, पत्ता लकड़ी सब कुछ। गर्म वृष्टि सहे आने करे रखन, तो वो वृक्ष तो बारिश गर्मी तो सब कुछ सहन न करते और दूसरों को रक्षा करते, छाया देते। गर्मी में हम वृक्ष से छाया मिलते हैं और बारिश में भी। तो इस प्रकार वैष्णव का गुण होना चाहिए, उत्तम होया वैष्णव अबे निराभिमान। तो भक्त तो एक वैष्णव उत्तम होते हुए भी तो अभिमानी नहीं होते, मैं बड़ा वैष्णव हूँ, मैं इतने सारे साल से भक्ति करता हूँ, मैं बड़ा वैष्णव हूँ, सब भक्त मुझको सम्मान देते, तो ऐसा नहीं सोचते। जीव समान देवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, और भक्त जन तो सब जीव को सम्मान देते क्योंकि जानते कि भगवान कृष्ण सब जीव के साथ है, सब जीव के हृदय में है। ऐ मत हय जे कृष्ण नाम लय से श्री कृष्ण चरणे ता प्रेम उपजय। तो जो भी भक्त इस प्रकार भावना से कृष्ण नाम लेते हैं तो तुरंत वो भक्त श्री कृष्ण के चरण में प्रेम मिलते, तो इसलिए वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस श्लोक के बारे में और भी कहते हैं कि ऊर्ध्व बाहु करे काहूं सुनो सर्वलोक नाम सूत्रे गाथी परो कंठे ए श्लोक। चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी सबको बोलते, तो ऊर्ध्व बाहु करे मैं दोनों हाथों उठा के सबको बोलता हूं, सुनो सर्वलोक नाम सूत्र गंथी पर कंठे ए श्लोक। इस नाम के सूत्र क्या बोलते हैं, कॉटन थ्रेड सूत्र, नाम का सूत्र से एक हा बनाओ और इस श्लोक अपना कंठ पर रेख दो, और अभी लॉय बाजार में आप खरीद कर सकते ऐसे कपड़ा जिसमें इस श्लोक का लेख है बांग्ला लिपि में, त्रिनाद पीसु नीचे न थोड़ा पीसु हिस्ट्री अमान ना मान देना कीर्तन ये सदा है। इसका मतलब है तो सदैव इस श्लोक कहना चाहिए, मतलब कंठस्थ होना चाहिए, चुनाद भी सुने चाहिए, मतलब चैतन्य महाप्रभु कहते कीर्तनीय सदा हरि ही, और सदैव भी इस श्लोक का अर्थ स्मरण करके हरि नाम करना चाहिए, नहीं तो गलत अभ्यास से तो हरि नाम करके भी मैं बोरो हूं, मैं सबसे बोरो हूं, ईश्वरो हम भोगी, इस भावना आएगी मन में, Hare Krishna, main bada hoon, main bada hoon, main bada hoon. Rama, Rama, Hare, Hare, main sabse bada hoon. Nahi. Wo sab chhod ke trinadapi sunechana is bhavana lena chahiye. तो इस भावना कैसे लाना है, इस आध्यात्मिक नम्रता और सहिष्णुता कैसे संभव है? हमारे लिए असंभव जैसे है. हम ऐसे बोलते हैं लेकिन बहुत अनादिकाल से हमारी भावना विपरीत होने से उस कारण से हमारे लिए बहुत कठिन जैसे है. ऐसे चुनादपि सुनिश्चित भावना लाना, तो इसलिए हमें समझना चाहिए हम कौन है. स्वरूप ज्ञान होना चाहिए. जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हमको पूरा विश्वस्त होना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ. मैं जगत का स्वामी नहीं हूँ, मैं जगत का भोगी नहीं हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ. मैं भारतीय नहीं हूँ, हिंदू नहीं हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ. तो इसलिए बार बार सुनना चाहिए कि मैं कृष्ण का दास हूँ. इस भौतिक संसार के साथ मेरा कुछ भी वास्तविक संबंध नहीं है. बार बार सुनना चाहिए. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बार बार जोर से हमको सिखाया कि हम इस शरीर नहीं है. इस शरीर क्षणिक है, इस पूरे जगत क्षणिक है. सत्य है, सनातन है कृष्ण, और जीव का संबंध है कृष्ण के साथ. तो ये सब समझना चाहिए. और इस सत्य वचन समझने से अपने आप चुनादपि सुनिश्चिता आएगी. यदि हम साक्षात्कार करते हैं कि पूरा जगत में सब कुछ जो है उसमें कुछ नहीं है, कृष्ण और कृष्ण भक्ति सब कुछ ही है, तो वो समझने से अपने आप वो चुनादपि सुनिश्चित भाव आएगी. मैं कौन हूं? मैं असंख्य जीवों में एक हूँ. मैं संसार सागर में हूँ. मैं निरुपाय असहाय हूँ. मैं पूर्ण रूप से कृष्ण भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर करता हूँ. तो इस प्रकार सोचने से अपना लघुता समझने से चुनादपि सुनिश्चिता भाव आते हैं. तो इसलिए इस श्रील प्रभुपाद हमको बाबा सिखाए हम कौन हैं. हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के क्षुद्र दास हैं. तो इस शिक्षा चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टक में आठ श्लोक में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है. तो इस शिक्षा जो इस तृतीय श्लोक में सबसे प्रसिद्ध है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में, इसके पश्चात शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा देते हैं लालसमय भक्ति के बारे में, विरह भक्ति के बारे में, और प्रेम भक्ति गोपी भक्ति का सर्वोत्कृष्ट स्तर के बारे में. परंतु ये सब उच्च कक्ष भक्ति का विचार और चर्चा में प्रवेश करने के लिए पहले चुनादपि सुनिचन इस श्लोक का तात्पर्य समझना चाहिए। प्रेम की कथा, गोपी कथा, विरह भाव की कथा, वो सब बहुत बहुत उच्च है, तो उसमें वो सब विषय में प्रवेश करने के लिए हमें नीच होना चाहिए, नीच नहीं नीच भावना से भक्ति करना चाहिए। यदि हम खुद का बल से प्रयास करते हैं ऊपर जाने के लिए, तो माया का बल से हम नीचे जाएंगे, और यदि हम अति विनम्र भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेते हैं, तो भगवान हमको ऊपर कक्ष में डालेंगे। तो ये भक्ति का रहस्य है। इस श्लोक का अर्थ भक्ति का रहस्य है, और विशेषकर जो चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी है, इस श्लोक का तात्पर्य सदैव विचार करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो जो बोलना चाहता था बोल दिया था, अगर इसके बारे में कुछ प्रश्न हो पूछिए। गिव द माइक ओवर। क्यों ऐसा होता है? भक्ति पथ में बहुत परीक्षा होती है। ऐसा नहीं है कि हरे कृष्ण और असंख्य जीवनों के कुसंस्कार तो नष्ट हो जाते। तो माया हमको बहुत परीक्षा देती है। और आप स्वयं कहते हैं कि बद्ध जीवों की भावना कितना दूषित है, कि हम भक्ति में आते हैं सेवा करने के लिए, विनम्र होने के लिए, और थोड़ा सा अग्रसर होने से हम दंभित होते कि मैं कितना बड़ा भक्त बन गए हूं। तो अपना मन को देखना चाहिए कि क्या मैं कैसे ही सोचता हूँ। भक्ति में इस गर्व के लिए नहीं आया हूँ, और इसलिए बार बार चुनादपि सुनिचन इस श्लोक का अर्थ का विचार करना चाहिए। बार बार खुद को चेकिंग करना चाहिए।
हरे
तो एक ही प्रश्न जैसे मशीन जैसे नहीं कहना चाहिए. चुनाव सुन कह रहे सहिष्णुना मशीन जैसे नहीं कहना चाहिए. ये पूरा प्रोसेस जो है भक्ति का, यदि हम और सब कुछ करेंगे तो धीरे धीरे प्रगति होगी. वो पूरा प्रोसेस है. साधु संग, नाम कीर्तन, भगवत श्रवण, तो वो सब एलिमेंट होना चाहिए इसमें. तो खाली हरि नाम बोलना नहीं है, साधु संग भी करना चाहिए, भगवत श्रवण कर. साधु संग में दूसरे साधुओं हमको यथार्थ प्रासंगिक उपदेश देंगे हमारी अपनी स्थिति के बारे में. अगर हम थोड़ा दम्भिक होते हैं तो साधु जन कृपालु होने से हमको उपदेश देंगे, जिससे हम फिर विनम्र होंगे. और भागवत श्रवण, हम बार बार श्रीमद् भागवत सुनते हैं और सुनने से हम बार बार स्मरण करते हैं, हाँ हाँ मुझे नम्र होना चाहिए, दीन भाव होना चाहिए. तो ऐसे पूरा प्रोसेस है, पद्धति है, जिससे धीरे धीरे हम प्रगत हो सकते. ऑल राउंड प्रोसेस. परंतु हमको अप्लाई एप्लीकेशन होने चाहिए. इट्स नॉट मैकेनिकल. सो त्रिनादपि सुनिश्चयेन. वी हैव टू थिंक व्हाट इज द मीनिंग, नॉट जस्ट लाइक अ मशीन. और खाली नम्रता दिखाने से नम्रता नहीं होते. मैं कुछ साल बांग्लादेश में था, जिसमें वैष्णव संस्कृति बहुत है. तो ऐसा है कुछ नाम यज्ञ होते हैं, नाम यज्ञ या कीर्तन मेला, जिसमें वो लोग जो वैष्णव है, चीला के कंठी माला है, आते हैं और बहुत बहुत नम्रता दिखाते. लेकिन खाली दिखाने से ही वास्तव भक्ति नहीं होते, क्योंकि वो सब वर्णन है चैतन्य महाप्रभु का चरित्र और अन्य बड़े वैष्णवों का चरित्र कितना नम्र है. तो ऐसे है बहुत सहज प्राकृत सहज जो बोलते. तो नम्रता का अभिनय करते, लेकिन अभिनय और वास्तव नम्रता तो एक ही नहीं है. ओ, 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 ओ। खाली दिखाने से नम्रता नहीं होती. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So give up your attachments. Sharanagati. Sharanagati ke che ang hai. Aur ek hai vishwas. की यदि मैं भक्ति करूँगा भगवान कृष्ण मुझको सहायता करेंगे। हम सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, हम पूरा अधीन है। हम भक्ति साधना करते हैं परंतु हमारा बल नहीं है। हम करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण भगवान मुझको सहायता करो, मैं असहाय हूँ। यही नम्र भाव है। ओके, क्या यदि हम सोचते कि मैं भक्ति करता हूं तो हम भक्ति नहीं करते। और यदि हम भक्ति नहीं करते तो हम भक्ति नहीं करते। यदि हम सोचते कि मुझे दम्भिक नहीं होना चाहिए तो यदि जब भक्ति करता हूँ तो थोड़ा ऐसे दम्भिक होते कि मैं भक्ति करता हूँ कितना बड़ा भक्त हूँ, तो इसलिए मैं भक्ति नहीं करूँगा और इस प्रकार मैं नम्र होऊंगा। दीन भाव होना चाहिए, तो दीन भाव लाने के लिए मुझे दीन आचरण करना है, तो ऐसे ही नहीं होना चाहिए। तो मैं गुंडागिरी करूंगा, तो फिर मैं सबसे पतित हूं, मैं सचमुच बोल सकता हूं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। भक्तों को अपराध करूंगा फिर मैं सबसे पतित होऊंगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली ये सब समझना कठिन है, क्योंकि जो भक्ति करते हैं सोचते मैं भक्ति नहीं करता, जो उत्तम भक्त है, उत्तम है वैष्णव निजे माने तृणाधम, हम अभी पढ़ ले, तो समझना कठिन है कि जो वास्तव भक्ति करते हैं सोचते मैं भक्ति नहीं करता। तो इतना सा सोचना से हम भक्ति नहीं कर सकेंगे, भक्ति करना चाहिए। क्योंकि भक्ति क्या है, ऐसे सोचना कि मैं अति तुच्छ हूं, कृष्ण भगवान महान है, तो उसमें नम्रता होना चाहिए। यदि हम सोचते मैं और कृष्ण एक ही है तो भक्ति कहाँ है। समझना मतलब हनुमान जैसे अर्जुन जैसे, यदि कोई असुर आते है और सब वैष्णवों को अपराध करते है तो नम्रता नहीं है, तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कुछ नहीं कहे ना, वो नम्रता नहीं है। और सब अष्टमी तो वो असुरों का दमन करना चाहिए। ये सब समझना संभव है यदि हम पहले समझते कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण परम सत्य है और हम सब उनके सेवक हैं। जब तक यही बात हम नहीं समझते और भक्ति के और सभी रहस्य समझना संभव नहीं है। ये सब बात हम कठिन ऐसे सोचते क्योंकि हम पूरा विश्वास नहीं है कि कृष्ण भगवान है और हम उनके सेवक हैं। हम भौतिक दृष्टिकोण से ही सब कुछ मापना चाहते, भौतिक बुद्धि से। हरे कृष्ण।